वहां पर रहते थे, दोनों में बड़ा प्यार था। इसलिए गुरु जी बहुत पहले से प्रभुपाद जी की सेवा करते और किसी को नहीं वो कहते थे तुम ही, सबको कहते थे आपनी। इस तरह से गुरु जी अत्यंत हमारे प्रिय थे, इसलिए पूज्य पार्षदधर महाराज जी हमारे गुरु जी को बहुत आदर की दृष्टि से देखते, बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, जैसा होना चाहिए। तभी हमारे गुरु जी उनसे संन्यास लेने पर उनको आदर की दृष्टि से उनको बहुत सम्मान देते थे, इसलिए उन्होंने निवेदन किया काजे आप लोग जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं, अब प्रभुपाद के लिए जो भक्ति विनोद ठाकुर के अनुरूप ही उन्होंने रूप गोस्वामी इत्यादि के अनुसार में इसकी व्याख्या की है और श्रीमद् भागवत में भी ऐसा लिखा गया है, नमाभास करने वाला व्यक्ति भी जो कभी भी हरिनाम दीक्षा नहीं लिया था अजामिन और उसने हरिनाम लिया, नारायण नाम लिया, कोई दीक्षित व्यक्ति नहीं था, आदर और श्रद्धा भी नाम के प्रति नहीं थी, अब तभी ये नमाभास करके मुक्ति तो उसको सजी मिल गई, बैकुंठ लोक भी उसको लाभ हो गया। तो इसलिए ये आदरणीय है कि नहीं है? इसलिए यदि कोई दीक्षित न भी हो और हरिनाम करता है श्रद्धा पूर्वक करे तो वो आदरणीय है, ये तो भागवत में भी लिखा। और भी केवल इतना ही नहीं, तपस्ते जुजुव सत्सुंदरजा ब्रह्मानुचरणाम गृणंती जेते अहो बत सपचो अति गरियान जज्जिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुजुव सत्सुंदरजा ब्रह्मानुचरणाम। जो कोई नीचंडाल व्यक्ति भी हो और कृष्ण नाम करता है तो वो आदरणीय है, उसने पूर्व पूर्व जन्मों में सारे तपस्या व्रत होम ब्राह्मणों का कार्य ब्रह्मचर्य इत्यादि सब कुछ वो कर चुका है जिसके मुख से कृष्ण नाम निकला। यहाँ पर भी कहीं दीक्षा की बात नहीं कही गई। और भी ये भी बतलाया गया कि नो दीक्षा नो पुरश्चर्या, दीक्षा पुरश्चर्या कृष्ण मंत्र में जरूरत नहीं होती है कभी कभी, इसलिए यदि श्रद्धापूर्वक उसके मुख से निकल जाए तो उसको आदरण करना चाहिए। बात ये सब ठीक है किंतु ये शास्त्रों का ज्ञान आपको कौन दिखला है? भक्ति विनोद ठाकुर को और श्री रूप गोस्वामी को या श्री चैतन्य सचिनंदन गौर हरि को आप लोगों को किसने बतलाया? श्री प्रभुपाद जी ने। उन लोगों ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ में आप लोग थे रहे या प्रभुपाद जी बचपन से जन्म से ही भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में रहे, जिस सभा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति रसामृत सिंधु और सब ग्रंथों का चैतन्य चरितामृत का पाठ करते, छोटा शिशु क्या नाम विमला प्रसाद वो सिर पर चैतन्य चरितामृत श्रीमद भक्ति स्वामी सिंधु लेकर के जाते, एकाग्र चित्त से सुनते और श्री प्रभुपाद ने सब कुछ इनके अंदर में शक्ति संचार करके दिया। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर के भावों को जानते हैं ना आप लोग जानते हैं? आपको भक्ति विनोद ठाकुर का किसने परिचय कराया? तो सभी लोग चुप हो गए। क्या प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर का यह व्याख्या नहीं पढ़े थे? उनके समझ में और दिमाग में नहीं आया जो फिर से विचार करने की जरूरत है? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का यही अभिप्राय है जो श्री प्रभुपाद जी का अभिप्राय है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं जो प्रभुपाद जी का विचार को ही हम लोग ग्रहण करके चलने से हमारा कल्याण होगा और भक्ति विनोद ठाकुर की रूप गोस्वामी की महाप्रभु की हमारे ऊपर में कृपा। सुन करके सारे लोग स्तब्ध हो गए और पूज्य पार्षदधर महाराज जी ने भी कहा हाँ बात ठीक है, क्योंकि सत्य के प्रिय थे वो। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा खंडन कर रहा है या कुछ ऐसा विचार नहीं, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ में प्रसन्न किया जी हाँ ये विचार बहुत ही सुंदर है, हम लोगों को ये विचार को ग्रहण करके और प्रभुपाद के विचारों के अनुसार में ही भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोगों को दर्शन हम लोग उस सभा में दे सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी वैष्णव सभा बहुत कम देखने में मिलती है। बोलिए, बहुत पहले 1954 की करीब बात हम लोगों की नवदीप परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा गुरुजी ने किया था वो समाप्त हो चुकी थी और पूज्यपाद माधव महाराज जी भी वृंदावन में अपना कोई आश्रम खोज रहे थे, वो लोग भी आए थे। पूज्यपाद जाजावर महाराज, पूज्यपाद पुरी महाराज जी, पूज्यपाद माधव महाराज, ऋषिकेश महाराज, बहुत से महाराज लोग यहाँ पर आए थे। पूज्यपाद सिद्धार्थ महाराज जी भी उस समय वृंदावन में आए थे। हमारे यात्री लोग सब चले गए, ब्रह्मचारी लोग चले गए थे। अभी हम लोगों का मठ अभी स्थापन हुआ था, अभी मंदिर भी नहीं बना था, केशव जोड़ी मठ स्थापन हो गया था किंतु अभी विग्रह स्थापन नहीं हुआ था। इस प्रकार से वहाँ एक घर था गुरु महाराज जी का, यहाँ पर घर था, यहाँ पर दो घर थे, एक में मैं रहता था। तो उसी समय में गुरु महाराज जी से मिलने के लिए ये सारे आचार्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। पूज्यपाद सिद्धा महाराज, पूज्यपाद जाजावर महाराज, पूज्यपाद पुरी महाराज जी, ऋषिकेश महाराज जी भी उस समय में दामोदर महाराज ब्रह्मचारी थे, भक्ति क्या नाम था और उनका नाम कुछ दूसरा था और बहुत से कम तो 20-25 बड़े बड़े सन्यासी लोग और प्रवीण ब्रह्मचारी लोग, सीनियर ब्रह्मचारी लोग जो पीछे से सबने सन्यास लिया वो एकत्रित थे और इसी जगह में बैठ करके सभी लोग विचार कर रहे थे। आजकल जैसे हम लोग विचार करते हैं, दो चार वैष्णव मिलते हैं तो वो कैसा है वो कैसा है, यही सब चलता है, निंदा वंदना या ये सब। किंतु उन लोगों को मिलने में हमने देखा कि वो सब नहीं। ऋषिकेश महाराज थे उस समय, उनका क्या ब्रह्मचारी का नाम था मुझे याद, रिसड़ा में उनका मठ था। तो महाराज जी को भी शायद याद नहीं होगा, वो भी उस समय में थे। तो उस समय में उन्होंने एक प्रश्न किया ऋषिकेश महाराज जी ने, प्रश्न ये था ये प्रश्न था हाँ, जीव का स्वरूप क्या है, क्या जीव का स्वरूप न्यूट्रल है, तटस्थ है, उसमें कोई रस या कोई स्वरूप है या नहीं है, वो कुछ नहीं है, जैसा उनका संग होता है वैसे ही उनका स्वरूप भजन साधन करके उनका वैसा ही हो जाता है, ऐसा कहीं कहीं पर लिखा है। नरोत्तम ठाकुर जी ने भी ऐसा लिखा है कि जैसा संग होगा, हाँ जैसा संग होगा उसी के अनुसार में संग करते 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 सुनते सुनते उसके हृदय में एक सिद्ध स्वरूप उदित होगा और उसके अनुसार में भगवान के लीला में वो प्रवेश करेगा। इसके बहुत से शास्त्रों में कुछ कोटेशन है ऐसे, जैसा संग होगा वैसा ही उसकी सिद्धि होगी, जैसा भजन होगा वैसे उसकी सिद्धि होगी, और कहीं कहीं लिखा है ऐसा जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप ही है नित्य कृष्णदास। जब नित्य कृष्णदास है, जीव के स्वरूप में ही है, तो जिसका स्वरूप में जैसा भाव है साधु संग के प्रभाव से उसका अनर्थ दूर हो जाएगा और उसके अंदर में जैसा भाव है, जैसा उसका शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, वही स्वरूप प्रकट होगा। तो इसमें से हमारे समझ में नहीं आता ये कौन सा ठीक है, दोनों बातें एक साथ में मिलती हैं। तो इस विषय में मैं हम लोग कुछ आप लोगों से पूछते हैं, इस समय में प्रामाणिक व्यक्ति आप लोग हैं, प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद में आप लोगों जैसा वैष्णव हम नहीं देखते हैं जिससे हमारे प्रश्न का समाधान हो सके, इसलिए कृपा करके आप लोग हमें बतलाइए। प्रभुपाद के जितने भी सन्यासी थे जिसको प्रभुपाद ने सन्यास दिया उसको सबसे अंत में पूज्यपाद जाजावर महाराज जी को सन्यास, उनके लास्ट आखिरी सन्यासी थे। प्रभुपाद जी के प्यारे भी थे, सब वैष्णव लोगों को भी प्यारे थे, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के बहुत प्यारे थे सब लोगों के, वैष्णव के। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि दोनों शास्त्रों की बातें हैं। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये भी शास्त्र में लिखा है, और श्रील रूप गोस्वामी ने भी ऐसा लिखा है, कृति कृति शब्द भवेत शब्द भावा स्वसाधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रापट्टम हृदि साध्यता। इन चैतन्य चैतन्य में भी इसका ट्रांसलेशन ठीक इसी प्रकार से किया है, जीव का जो भाव है नित्य सिद्ध है, संघ के प्रभाव से जब उसका चित्त निर्मल होता है तो जिसका जैसा स्वरूप है ऐसा ही उदित होगा। इसलिए साधन किसी के लिए अनर्थ को हटाने के लिए, हृदय को निर्मल करने के लिए है। जब समय आएगा हृदय निर्मल हो जाएगा उसका स्वरूप जो है वही प्रकट होगा, जो नहीं है वो कहां से होगा। इसलिए प्राकट्य नित्य सिद्ध भावस्य प्राकट्यं निदिशात्, नित्य सिद्ध जो भाव है उसके प्रकट करने का नाम साधन है, नया कुछ बनाने का जो नया उसके रूप में उसका सिद्ध स्वरूप हो जाएगा ऐसा नहीं। तब ये मेरा विचार है, किंतु मैं और लोगों से पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ कि ये हमारी शंकाओं को दूर करके इसके विषय में क्या सिद्धांत हैं वो बतलाएं। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ने बड़े गंभीर थे और बहुत धीरे धीरे बोलते थे, उनकी बात हम नहीं, हम कुछ थोड़ा सा कम सुनते थे तो सुनाई ने बहुत धीरे धीरे। केवल ये निसिंह महाराज जी यदि कोई बात भी नहीं कहे तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी कोई ऐसा मुख से ऐसा उच्चारण न करे तभी ये जान जाएंगे ये क्या बोल रहे हैं, किंतु हमारे समझ में नहीं आ बहुत, इसलिए निकट में बैठ करके मैं निचली खूब धीरे धीरे मैं ये सुन रहा था। सीता महाराज जी ने बड़े तात्विक रूप में इस चीज का समर्थन किया कि जब जीव नित्य है और वो चेतन है और उसका अपना स्वरूप धर्म है और वो नित्य है तो मेरे विचार से उसका स्वरूप भी नित्य होना चाहिए, उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकता। जैसे यशोदा मैया का स्वरूप बदल अदल नहीं होगा, जैसे उद्धव जी आए ब्रज में आए गोपियों का महिमा देखी और देख करके उनकी चरण धूलि की वंदना की, प्राप्त होने की अभिलाषा भी की, किंतु उनको मिला नहीं, उनका स्वरूप बदल करके ब्रज की एक मयूर हो जाएंगे, कोकिल हो जाएंगे या गोपी बन जाएंगे, गोपियों की दासी बन जाएंगे, ये संभव पर नहीं हुआ, वो लौट करके वहीं पर चले आए। तब हाँ एक बात है कि कुछ देखा जाता है जो किसी का संग करने से स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप नहीं विचार बदल जाता है और किसी का नहीं बदलता है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के कहने से अनुपम जी थोड़ा सा प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं कल से कृष्ण का भजन करूंगा, मैं पहले जानता नहीं था, मैं रामचंद्र जी का भजन करता था, अब मैं कल से भजन करूंगा। किंतु रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन रोते हुए आए और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से कहा, प्रभो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भजन करूंगा कृष्ण का और आपकी बात जरूर मानूंगा, राधा कृष्ण जुगल का भजन करूंगा, किंतु रामचंद्र जी का भजन छोड़ते ही हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है, मैं छोड़ नहीं पाता, छोड़ने से मैं मर जाऊंगा। अब आप लोग बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं आग में जल करके मर जाना चाहता हूँ या विष खा लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका आदेश का पालन नहीं कर रहा और उधर हम रामचंद्र जी को छोड़ नहीं कर सकते, इस समय में मुझे क्या करना चाहिए। तब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने गले से लगा लिया, ठीक है तुम रामचंद्र जी का भजन करो, कोई भी बात नहीं। उन्होंने देखा ये इसका स्वरूप का ही ऐसा है, इसको बदलना ठीक नहीं। किंतु दूसरी तरफ में गोपाल भट्ट जी गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती वेंकट भट्ट, इनका पूरा परिवार नारायण की उपासना करता था, फिर वो बदल गया और वे कृष्ण राधा कृष्ण का भजन करने लगे। तो कभी कभी देखता है ये संघ के द्वारा ये बदल गया, तो इसमें कुछ विचार है। विचार क्या है? विचार यह है कि वो अपने अभी अनर्थों से निवृत्त होने के बाद में स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित नहीं था, वही दास रथ तक उस समय था, किंतु उसका स्वरूप धर्म जरूर उन्नत था, नहीं तो महाप्रभु के विचारों से वो बदल कैसे गया और राधा कृष्ण के स्वरूप भजन में वो कैसे लग गया। इसलिए हम तो ऐसा ही समझते हैं कि जीव का स्वरूप नित्य है, वो बदल नहीं सकता है किसी के बदलने से, केवल साधन के द्वारा नित्य सिद्ध जो भाव है वो प्रकट होता है। उन सब लोगों ने अपूज्य वासुदेव महाराज ने हमारे गुरु जी को निवेदन किया कि आपका विचार क्या है, हम लोग सुनना चाहते हैं। गुरु महाराज जी भी बोलते नहीं थे जब तक कि कुछ ऐसी बात न हो। अधिकांश हमने देखा है ये आकर के 10-20 आदमी बैठ जाएंगे और गुरु महाराज जी चुपचाप बैठे हुए लेटे हुए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। कभी कभी नरसिंह महाराज जी बिगड़ जाते थे उन पर, ये भद्रों के खाने बसे आके आए घंटा धरे, आपने तो कथा बोलते पारे नहीं, तो वो बोलते थे जैसे अच्छा आपने तो बोलते पारे, तो हम ये कहते की बोलबो, बोलने दोष ना बोलने दोष की बोलबो। तो जब तक कोई कहना तो उचित नहीं। पूज्य पार्थिविकम महाराज जी वेदांत का ग्रंथ लेकर और गुरु जी के पास में जाते और प्रश्न करते, जाओ तुम्हें पढ़े लो इनको कह देते, और हम लोग उल्टा सीधा जैसा करते तो बड़े प्रसन्न होकर के बोलते और इनको कह देते जैसे जाओ तुम पढ़ लो। क्यों? जानते थे ये गंभीर बुद्धिमान आदमी है और हम कहेंगे तो उल्टा सीधा जरूर कुछ लगाएगा, विवाद करेगा, ऐसे ग्रहण नहीं कर लेते ये, तो इसलिए इनको तो कह देते। वैसे गुरु महाराज जी बहुत गंभीर व्यक्तित्व के थे, बहुत कम बोलते, नपे तुले बस शब्दों को बोलते, किंतु जब भाषण होता तो सिंह की धमभाती गरज से, और यदि कोई प्रभुपाद का और भक्ति का विरुद्ध कोई बात होता तो सिंह की भांति उसका खंडन बंडन भी करते थे। तो उस समय गुरु जी बड़े मधुर सुर से बड़े आदत क्या कहेंगे बड़े नम्रता से उन्होंने निवेदन किया कि इस विषय में श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने जो कहा है वो परिपूर्ण रूप से ठीक है। एक विचार हमको आता है, ये विचार है कि जैसे किसी चीज का वृक्ष का बीज है, आम आम का वृक्ष, बाबला वृक्ष, नीम वृक्ष, तेतुल का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बहुत तरह के बीज हैं, गेहूं का है, चना का है, ये सब का बीज एक गंगा जी के तट पर बो दिया जाए और वही गंगा जी का पानी उसमें सींचा जाए सब में, और एक ही सूर्य उस पर चमक करके रोशनी और गर्मी देता है, एक ही वायु उसको बचा करके रक्षा करती है, और एक ही माली उनमें पानी देता है, सींचता है, रक्षा करता है, तो ये क्यों आम से आम का पेड़, बीज से तेतुल से खट्टा इमली और चने से चना, गेहूं से गेहूं, ये क्यों हो जाता है? अलग अलग बीज हो जाते हैं। जिस बीज में जिस चीज की पोटेंसी है केवल वही चीज निकल सकता है, एक चीज नहीं होगा। भले ही पानी एक है, जल एक है, मिट्टी एक है, हवा एक है, एक ही माली उसको सिंचन कर रहा है, किंतु बीज में जो पोटेंसी है, जो बाहर से नहीं दिखती है, उस पोटेंसी के वजह से एक पानी, एक हवा, एक सूर्य का ताप भिन्न भिन्न चीजों को उत्पन्न करता है। इसलिए जितने जीव हैं उनका अपना एक नित्य सिद्ध स्वरूप है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। इसलिए श्रम के प्रभाव से उसमें अनर्थ दूर हो जाएंगे, अपराध दूर हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भवति, चेतो दर्पण मार्जन, संसार दावानल सब दूर हो जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधु जीवनम तक हो जाएगा। इसके बाद में उसका जो स्वरूप है, ये तो जिस जीव में जिस भाव की पोटेंसी है वही उदित होगा, कभी भी वो बदल नहीं सकता है, नित्य सिद्ध है वो भाव। उन्होंने कहा कि कोई प्रमाण है इसका जो आप कह रहे हैं? प्रमाण है भक्ति विनोद ठाकुर जी का शिक्षाष्टक का भाष्टी का, उन्होंने बाहर करके और उनमें दिखलाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले चेतो दर्शन मार्जनम में विद्यावधु जीवनम के भाष्य में इन्होंने लिखा है, जीव का अपना सिद्ध स्वरूप है। जैसे भगवान के सुंदर रूप है, उसमें हाथ है, पैर है, नाक है, उसमें भाव है, सब कुछ है उसमें, कृष्ण के अंग प्रत्यंग सब हैं। उसी प्रकार से जीव में के शुद्ध स्वरूप में उसका अंग प्रत्यंग भाव स्वरूप जो कुछ है वो सब उसमें है, किंतु पोटेंसी के रूप में है, व्यक्त के रूप में नहीं है। विशेष करके बद्ध जीवों का यह स्वरूप जो कारणाभिशायी विष्णु से प्रकट हुए हैं, जो तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, उनमें सिद्ध स्वरूप का बीज तो है, पोटेंसी है, ये कौन सा रस उसके स्वरूप में ही है, इसलिए उसका सिद्ध स्वरूप है, उसके अंग प्रत्यंग हैं। और कौन भाव से वो कृष्ण की सेवा करता है वो भी उसमें बीज में है, किंतु प्रकट नहीं है। वो प्रकट होता है कैसे? साधुओं के संग से। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे मान लिया कि मधुर रस का भक्त है, उसके अंदर में मधुर रस की पोटेंसी है, किंतु दास्य भक्त के पास में जाकर के वो शिक्षा ले रहा है, तो दास्य तत्व वहां पर हुआ, इसके बाद में नहीं होगा। जैसे उनके गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब शिव संप्रदाय में दास्य रस तक उनका भजन करते थे, किंतु महाप्रभु जी ने देखा ये तो दास्य रस के सेवक नहीं है, इसलिए उनको जब कृष्ण कथा सुनाई और उनको भजन के तरीके बतलाए, कृष्ण स्वरूप का माधुर्य उनको बतलाया, गोपियों का माधुर्य वर्णन किया, लक्ष्मी से भी अधिक श्रीमती राधिका इत्यादि गोपियों का महत्व बतलाया, उनका हृदय बदल गया और उसे आगे बढ़ करके मधुर रस में प्रतिष्ठित हो गए। कभी कभी किसी का होता है कि उन्नत रस का अधिकारी दास्य भाव के पास में जाएगा तो वही तप होगा, किंतु उसे संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए हमारे कलना वाले गौरीदास के पंडित के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु जी, हृदय चैतन्य, उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया जी गोसम, देखा जैसे इसकी तो अभी पूरी इच्छा नहीं हो रही है, ये कुछ और स्वर्ण करना चाहता है, इसलिए भेज दिया उनके पास में। जी गोस्वामी तो आप लोग जानते हैं मधुर रस के उपासक थे, इसलिए वहां पर उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई और उनका वह जो स्वरूप का जो धर्म था वहां पर विशेष रूप से उदित हुआ। इसलिए जिसका जिसके स्वरूप में फलबद्ध जीव है किंतु जिसमें जो चीज की पोटेंसी है, जिस रस की, जिस सेवा की पोटेंसी है, बस हृदय निर्मल होने पर, माया दूर होने पर वही भाव प्रकट होगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पष्ट रूप में लिखा है वो जरा पढ़ो तो पढ़ो, तुम हमको चश्मा नहीं।
श्रवण कीर्तनादि साधना समय जदा शुद्ध भक्ति उदेति तदा सस्व अविद्वत्तम परिहृत्य विद्या चिरेत वितृष्णा जननी हापि जीवस्य सुललिंगमय उपाधिक देहदयम विनाश तस्य स्वरूपगतम शुद्ध चिद्देहं अधिकार भेदेन मधुर रसास्वादन आयतनम गोपिकाद्यमपि प्रकटयति।
गोपिका देह पर्यंत शांत, दास्य, सख, पात्सल्य और मधुर, उनमें से जिनका जो स्वरूप है उसमें पोटेंसी से वही चीज होगी। एक उदाहरण और दिया, कितना बोल सकता है, एक उदाहरण और दिया, जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी, वर्षा होती है स्वाति नक्षत्र में, उस समय में समुद्र के सीप में यदि पड़ता है तो वो मोती होता है, हाथी के मस्तिष्क पड़ने से वो गजमुक्ता होता है, सांप के ऊपर में यदि उसके ऊपर में पड़े तो वो क्या मणि हो जाता है, गाय के खुर के ऊपर पड़े तो गोरोचना, और केले के वृक्ष के ऊपर में पड़ता है तो वो कपूर हो जाता है। एक ही स्वाति नक्षत्र का पानी यदि पड़ता है तो ये अलग अलग चीजें क्यों हो जाती है, केले में अलग कपूर, सीप में होने पर मोती, हाथी के ऊपर में गजमुक्ता, सांप के ऊपर में मणि, गाय के खुर पर होने से गोरोचना हो जाती है, ये क्यों? इसलिए जो स्वरूप में उसके है, उसकी पोटेंसी में जो है, पानी एक होने पर भी एक ही चीज प्रकट नहीं होता, इसलिए एक प्रकार का संग होने से भी ऐसा नहीं होता, ये एक ही चीज होगी, इसलिए संग प्रधान नहीं, उसके अंदर में पोटेंसी प्रधान है जो जीवों के सिद्ध स्वरूप में है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिखा कि विजय कुमार और ब्रजनाथ, मामा और भगिना, दोनों नवद्वीप में वैष्णव दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षित हुए और भजन की सारी शिक्षा आरंभ लिया और इसके बाद में पुरी में गए और वहां पर बक्रेश्वर पंडित से, बक्रेश्वर नहीं, उनके शिष्य गोपाल भट्ट, गोपाल गुरु, उनसे उन्होंने रस तत्व के संबंध में सारी शिक्षाएं ली। दोनों एक ही गुरु से, नवदीप में भी और वहां पर भी एक गुरु से दीक्षित भी हुए और शिक्षा गुरु के रूप में सारा रस तत्व उनसे पढ़ा, समझा, सीखा। किंतु ब्रजनाथ जी दास्य में रह गए, उनको दास्य तक ही देकर के छोड़ सख्त भाव दिया और वहीं तक उनकी पढ़ाई समाप्त करके उनको भजन में लगाया। वो गृहस्थ होकर के सख्त रस से कृष्ण की सेवा करने में नियुक्त कर दिया और विजय कुमार इसे संतुष्ट नहीं हुए, एकांत में बाबा जी से और प्रश्न किया तो उनको और भी ऊंचा ले जाकर के बतला करके उनको मधुर रस में प्रतिष्ठित किया। वे मधुर रस में प्रतिष्ठित हो गए, गोपियों के आनुगत्य में भजन करना आरंभ किया। तो एक ही गुरु के यहाँ सब कुछ सीखा, समझा, किंतु ये दो प्रकार की भावना क्यों हो गई, क्यों ये अलग अलग रसों में आए? इसलिए गुरु जी ने बड़ी नम्रता से इन सब विचारों को उपस्थित करते ही वो सभा जय जयकार कर उठी और बड़े सभी लोग प्रसन्न होकर के गुरु महाराज जी का मत स्वीकार किया। इस प्रकार से वहां पर श्रीधर महाराज जी का विचार और हमारे आचार्यों के विचार हमारे गुरु महाराज जी के विचार के अनुसार हुआ और बड़े सब पूज्यपाद श्रीधर महाराज से जाजाव महाराज सबसे अधिक प्रसन्न हुए और ऋषिकेश महाराज जो प्रश्न करने वाले थे वो तो उनके सब लोगों के चरणों में लुट गए। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज मैं 2500 वर्षों से 300 वर्षों से इस प्रश्न की मीमांसा चाहता था, नहीं हो रहा था। आज हमारा हृदय एकदम एकदम क्लियर हो गया कि ये बात ठीक है। बोलो। ये बतलाना चाहता हूं, गुरु जी सब समय हम लोगों को ये कहते थे कि जीव का अपना नित्य सिद्ध स्वरूप है। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र का पानी मोती और इन सब चीजों के लिए प्रकाश करने के लिए आवश्यक है, साधु संग भी वैसे ही हमारे स्वरूप नित्य सिद्ध स्वरूप को प्रकाश करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किंतु स्वरूप का परिवर्तन कर देगा वो संग ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो केवल उसके स्वरूप के प्रकट होने में सहायक है, बिना उसके ये सिद्ध स्वरूप भी प्रकट नहीं होगा। किंतु जो है वो उसी को प्रकट करेगा। जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी बदल नहीं देता, जो है उसी को उसमें प्रकट कर देता है। इसलिए जीव के स्वरूप में अभी भी जो पोटेंसी है, जो सिद्ध भाव है, सिद्ध स्वरूप है, वही साधु संघ के द्वारा क्रमशः निर्मल होकर के पंचभौतिक शरीर और सुख शरीर इत्यादि के दूर हो जाने पर उसको वो प्रकट करता है। इसलिए जीव का अपना नित्य सिद्ध स्वरूप है, साधु संघ के बिना उसका प्रकट नहीं हो सकता। मैंने बहुत समय लिया और मैं पूज्य पात्र विक्रम महाराज जी को संक्षेप में कुछ कहने के लिए मैं निवेदन करूंगा। अब आरती का भी समय हो गया है और कल सवेरे हम लोग मथुरा में जिन स्थानों को दर्शन नहीं किया वहाँ के परिक्रमा में जाएंगे। जल्दी में बोल दो।
पूज्यपाद नारायण महाराज, दैन्य से उल्टा काम करने के चलते हैं। ऐसा विधि है शास्त्र में, मधुरे में क्षमा पाए, लेकिन ही इज डूइंग ऑपोजिट, ब्रेड में भी उल्टा चलता है। इसलिए सब कोई के उल्टा चलने पड़ेगा। हाउएवर आई मस्ट ओबे हिम, यू आर सबमिटिंग समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट। We must proceed according to our ability. And God will arrange for the necessary subject which is good for me in course of my sadhana. We should not do any hesitation and we should not do anything out of order. So we should not jump to the position of high devotee. We should proceed according to our ability. Thank you.
Can I?